ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जाय उदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो रामनवमी के अवसर पर आज जो है श्रीमद् भागवतम नवा स्कंद अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 23 लेंगे पढ़ेंगे। तो अध्याय का शीर्षक है भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज करना। पुरुषो रामचरितम्, पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् अनुंशस्य परो राजन्, अनुंशस्य परो राजन् कर्म बन्धैर्विमुच्यते, कर्म बन्धैर्विमुच्यते। पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम् भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवणे कानों से उपधारयन श्रवण करके अनुशंस परः ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन हे राजा परीक्षित, कर्म बंधे कर्म के बंधनों से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य शीला ऐसी भक्तिवेदांत संस्कृत की अनुवाद। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के द्वेष से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ना चाहता चुका होता है तो अन्य भक्त उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धर्म में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त हो भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके परम रक्षक हैं अतएव वह सोचता है तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से, उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम ज्ञान तैमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है संक्षिप्त में, जैसे आज और कल दो दिन हमारे मंदिर में ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य पर जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में परीक्षित महाराज जो है उनको सुखदेव गोस्वामी जो है संक्षिप्त में राम जी का चरित्र बताते हैं। तो इस श्लोक में उन्होंने बताया है, हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या से मोह से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति रामचंद्र भगवान के गुणों का अगर कथन करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि रामायण में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, युद्ध कांड में बताया जाता है कि जब ये रामचंद्र भगवान सेतु पार करके लंका उन्होंने प्रवेश किया था रावण का वध करने के लिए, लेकिन उससे युद्ध से पहले उन्होंने एक घोषणा की थी। बहुत सुंदर श्लोक आता है, सक्रदेव प्रपन्नो यस्तवस्मी च याचते अभयम् सर्वधा तस्मै ददाम्यव्रतम् मम। तो राम भगवान ने कहा था यदि कोई निष्ठापूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है, चाहे वो रावण हो विभीषण कोई भी है, हे प्रभो आज से मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूं, यह मेरा व्रत है। तो ये राम भगवान ने खास करके रावण कुंभकर्ण और उनके साथीदारों के लिए कहा था। तो आप देखते कि कोई भी युद्ध होने से पहले एक संधि, एक अनेक मौका दिया जाता है पार्टी चेंज करने का, अपना माइंड चेंज करने का। महाभारत में हम देखते हैं युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर महाराज किसके पास गए थे, भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके पास गए थे, उनकी उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। तो आज जो है प्रयास करेंगे कि रामायण में उल्लेख आता है एक बार वाल्मीकि उनके आश्रम में नारद जी पधारे थे। तो जब ही नारद जी वहां पधारे थे तो वाल्मीकि जो है उन्होंने नारद जी से जिज्ञासा किया, क्योंकि नारद जी त्रिकालदर्शी है, तो उन्होंने उनसे जिज्ञासा किया, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति है जो अच्छे गुणों से परिपूर्ण है, तो जिसके अंतर्गत जो है नारद मुनि जो है वाल्मीकि जी को राम भगवान के बारे में, उनके 16 तीन श्लोक हैं, तो इन श्लोकों के अंतर्गत राम भगवान के 16 दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, तो इनके बारे में आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो ये 16 गुण क्या क्या है, तो पहले हम उसका टाइटल देख लेते। गुणवान, गुणवान का मतलब है ज्ञानी या जो जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण है। वीर्यवान, स्वस्थ, संयमी और हृष्टपुष्ट। धर्मज्ञ, धर्म के साथ प्रेम, सेवा और मदद करने वाला। कृतज्ञ, विनम्रता और अपनत्व से भरा, सत्य वाक्यो सच बोलने वाला, ईमानदार, फिर दृढ़ प्रतिज्ञ मजबूत हौसले वाला, चरित्रेण युक्त सदाचारी अच्छा व्यवहार विचार, फिर सर्वभूतेषु हित सभी प्राणियों का रक्षक मददगार, विद्वान बुद्धिमान और विवेकशील, सामर्थ्यशाली सभी का भरोसा समर्थन पाने वाला, एक प्रिय दर्शन खूबसूरत सबको आकर्षित करने में समर्थ, आत्मवान मन पर अधिकार रखना, धैर्यवान व व्यसन से मुक्त, जित क्रोधो क्रोध जीतने वाला, शांत और सहज, शरणागत दायक कांतिमान अच्छा व्यक्तित्व, अनुसूयक किसी की निंदा न करने वाला, इसका अर्थ ये भी है बिना ईर्ष्या, बिभ्यति देवा युद्ध में जिनके क्रोध से क्रोधित होने पर देवता भी डर जाते हैं, जोशीला गलत बातों का विरोधी। तो ये 16 जो है राम भगवान के गुणों का वर्णन जो है नारद जी ने वाल्मीकि को किया था। तो सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने, नाम कमाने यानी ख्याति यश कीर्ति के लिए सद्गुणों और अच्छे का कर्मों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि गुण और अच्छे कर्म सम्मान व प्रतिष्ठा का कारण है, नहीं बनते हैं बल्कि किसी भी इंसान को असाधारण और विलक्षण नेतृत्व शक्तियों का स्वामी बना देता है। लेकिन कोई साधारण इंसान आगे रहने, बेहतर नेतृत्व क्षमता पाने या ऊंचाई को छूने के लिए किन खास गुणों पर ध्यान दे, यह समझने के लिए धर्म ग्रंथों के नजरिए में भगवान श्री राम का चरित्र श्रेष्ठ आदर्श है। तो आप देखते हैं कि हमारे विचार हमारे चरित्र बनाते हैं। तो आज हम यहाँ रामचंद्र भगवान के ये जो 16 गुण है जो वाल्मीकि ने उसको फिर विस्तारित रूप में बताया है, तो उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो चाणक्य पंडित एक बहुत सुंदर श्लोक में बताते हैं, उसमें बताते हैं कि इस दुनिया में जो बुद्धिमान लोग हैं अपना समय कैसे वो बिताते हैं। प्रातेर द्यूत प्रसंगेन मध्यान स्त्री प्रसंगतः रात्र चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमतः। तो भी वो इसमें रामायण महाभारत और जो है इसका जो है भगवद गीता का वो उल्लेख करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिन का समय 3 प्रकार से बिताते हैं। सुबह का समय महाभारत का श्रवण करके, दोपहर का समय रामायण का श्रवण करके, और संध्या खास करके भागवतम समय भागवत का पाठ सुनने का आनंद लेते हुए। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो गुण है वो है गुणवान, ज्ञानी व सारे सद्गुणों से परिपूर्ण, सारे जीवों के प्रति आदर सम्मान और बुजुर्गों के आदेश का पालन करने वाला। तो आप देखते हैं कि भौतिक जगत में तो जब एक लड़का लड़की शादी भी उनका तय होता है तो कुंडली के अनुसार गुण भी देखा जाता है, और एक गुण के अनुसार एक दूसरा गण भी होता है, एक देव गण होता है, राक्षस गण होता है, मनुष्य गण भी होता है, तो उसको मैच करते हैं भौतिक जगत में। तो आप देखते हैं कि जैसे चैतन्य भागवत में भी आता है, चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि जब ही निमाय पंडित का जन्म हुआ था तो उस वक्त भी जो है जो उनके जो ये थे माता के जो पिताजी जो थे नीलांबर चक्रवर्ती, तो उन्होंने भी जब उनकी कुंडली बनाई थी तो उन्होंने बहुत सारे जो है उनके गुण बताए थे। तो भागवत में भी आप देखते हैं कि जब ये गर्ग ऋषि आए थे गोकुल में कृष्ण बलराम का नामकरण करने के लिए, तो उस वक्त भी उन्होंने क्या बताया था कि ये जो बच्चा है कृष्ण, हाँ, इसके अंदर नारायण के समान गुण है, नारायण के समान ही गुण है। तो इस प्रकार एक भौतिक जगत में हमें देखते हैं कि आज जैसे एक अंग्रेजी में भी कहावत है, इफ समथिंग इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। गुण का मतलब एक चरित्र होता है, तो अगर एक व्यक्ति का अगर चरित्र खराब है तो सब कुछ चला गया। तो लेकिन आज कलयुग है, लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर आगे है जो है वो है वीर्यवान, स्वस्थ संयमी और बलवान। तो राम भगवान के गुणों में नारद जी बताते हैं वीर्यवान, और आप देखते हैं कि राम भगवान ने बचपन से ही अपना जो है शौर्य दिखाया था, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि उन्होंने जो है धनुष तोड़ा था, फिर ताड़क सुभाऊ मारीच दुंदुबी खर दूषण बहुत सारे असुरों का वध किया था। हालांकि अंत में उन्होंने रावण का भी वध किया था। तो इस प्रकार उनको वो बताते हैं कि वीरवान। फिर तीसरा धर्मज्ञ, धर्मज्ञ का मतलब है कि धर्म के साथ प्रेम सेवा और मदद करने वाला। तो आप देखते हैं कि आज बहुत सारे इस दुनिया में लोग अपने अपना अपना धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वास्तविक में धर्म का जो डेफिनेशन है, अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, धर्म क्या है वही लोग नहीं जानते। तो धर्म एक होता है एक व्यक्ति का स्वभाव, उसके गुण के अनुसार गुण कर्म विभाग। तो जैसे एक चीनी है या नमक है या गुड़ है, अलग अलग पदार्थ है, उनके गुण धर्म होते हैं। तो उसी प्रकार जीव का जो धर्म है वो है सनातन धर्म है, और भगवान जो है वो धर्म के पिता है। धर्मात्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम में यमराज जी बताते हैं कि धर्म का जो है धर्म का निर्माण है वो भगवान ने किया है, और इसके भगवान के अतिरिक्त और कोई जानता नहीं। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लीलाएं हैं रामायण में कि जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि राम भगवान, उन्होंने एक दरबार भी रखा था, जैसे बहुत जगह देखते हैं कि कहा जाता है राम दरबार, आप लोगों ने सुना होगा। तो एक ऐसी कथा आती है, एक बार एक ब्राह्मण थे सर्वार्थ सिद्ध, लेकिन ये बड़े क्रोधी थे। तो एक बार वो सराय में नहाकर जब आ रहे थे तो एक कुत्ता सो रहा था वहां, तो कुत्ता रास्ते में था, तो उन्होंने क्या किया, एक डंडा लेकर कुत्ते की अच्छी तरह पिटाई की, तो कुत्ता सीधा जो है वो राम दरबार में जाके वहां एक घंटी थी, घंटी बजाया। तो राम भगवान ने लक्ष्मण से कहा, अरे देखो कौन घंटी बजा रहा है, उनको प्रेम से अंदर लेके आओ। तो जैसे राम वहां गए, सॉरी लक्ष्मण गए बाहर, तो उन्होंने देखा एक कुत्ता घंटी बजा रहा है, तो उन्होंने उसको डांटा बेचारे को, बोला ये घंटी क्यों बजा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे राम से मिलना है। तुमको राम से मिलना है? बोला हाँ मिलना है जरूर। तो फिर लक्ष्मण उसको अंदर ले आए, तो फिर राम भगवान ने पूछा, क्या बताओ आपकी समस्या क्या है। तो फिर उस कुत्ते ने बताया कि उस दिन सुबह क्या हुआ। तो राम भगवान ने जो है कहा कि लक्ष्मण को जाके तुरंत इस ब्राह्मण को लेके आओ, तो हम अभी निश्चित करेंगे कि इसको किस प्रकार का दंड देना है। तो राम भगवान के जितने भी कोर्ट के बड़े बड़े वहां विद्वान थे, तो राम भगवान ने उनसे जिज्ञासा की कि देखो ये ब्राह्मण ने इस कुत्ते की पिटाई की है, तो इस ब्राह्मण को हमें किस प्रकार का दंड देना चाहिए। तो सारे जो है ब्राह्मण वो जितने भी विद्वान थे वो सोच में पड़ गए अभी क्या करना चाहिए। तो शाम का समय हो रहा था, तो कुत्ते ने देखा है कि इनका कुछ डिसीजन होने वाला नहीं है, तो कुत्ते ने राम भगवान से कहा, अरे देखो मैं जो बताता हूँ आप ऐसे डिसीजन ले लो। तो कुत्ते ने राम भगवान से कहा कि इस ब्राह्मण को आप क्या करो, एक यहाँ पीठ है एक गांव में, कालंजर नाम का एक गांव है, वहां का पीठ का इसको मठाधीश बना दो। तो सारे सब लोग चौंक गए, अरे उन्होंने कहा अरे इसने इतना बड़ा इसको प्रमोशन कैसे दे दिया। तो राम भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं, बाकी लोग अगर प्रसन्न है तो हम इसको मठाधीश बना देते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि उस कुत्ते ने कहा कि पिछले जन्म में मैं वहां का मठाधीश था, तो मैंने बहुत सारे पाप किए तो मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो अभी इसको पता चलेगा कि एक व्यक्ति अगर एक जवाबदारी लेता है तो उसको किस प्रकार एक जवाबदारी निभाना होता है। तो धर्मज्ञ का अर्थ है कि एक व्यक्ति सही ढंग से जो है कोई भी झगड़ा हो या कोई भी चीज के बारे में डिसीजन वो यानी दोनों के फेवर में दे सके, तो उसको कहते हैं जिसको पूरा संपूर्ण धर्म का ज्ञान है तो उसको धर्मज्ञ कहा जाता है। तो ज्यादा उदाहरण आगे चलते हैं, चौथा गुण है वो है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ है विनम्रता और अपनत्व से भरा एहसासमंद। तो आप देखते हैं कि भगवान का एक नाम है भावग्रही जनार्दन। तो कृष्ण भगवान आप देखते हैं कि अपने भक्तों के प्रति तो इतने कृतज्ञ रहते हैं। तो महाभारत में भी एक बार ऐसे बताया था कि कृष्ण भगवान की उंगली कट गई तो तुरंत द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी साड़ी को फाड़ के उनके उंगली को जो है उन्होंने अपने वो कपड़े से बांध दिया। तो भगवान ने कहा मैं इसके प्रति हर समय कृतज्ञ रहूंगा। तो आप देखते हैं कि राम भगवान भी आप देखते हैं कि उनके जितने भी पार्षद थे जिन्होंने उनको अपने महाभारत के में जो भी उन्होंने रामायण में उनकी मदद की है उनके प्रति बड़े कृतज्ञ थे। तो उल्लेख आता है हनुमान जी का। आप देखते हैं कि हनुमान जी एक भगवान के ऐसे भक्त है, अनन्य भक्त है। तो जब ये युद्ध के पश्चात राम भगवान सबको कुछ ना कुछ वो गिफ्ट तोहफा दे रहे थे तो विभीषण ने राम भगवान को एक बहुत ही सुंदर मोती का हार दिया था। तो ऐसे बताया जाता है कि राम भगवान ने सोचा यार ये सबसे बड़ा तोहफा है ये हनुमान जी को दे देते। तो हनुमान जी को जैसे वो मोती का हार दे दिया तो हनुमान जी वो अपने दांत से तोड़ के देख रहे थे। तो सब लोग कहने लगे ये तो बंदर ही है, इसको तो इसकी कीमत मालूम ही नहीं मोती की। तो फिर सब लोग चर्चा करने लगे हनुमान जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो किसने पूछा अरे हनुमान जी आप क्या कर क्या रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं राम ने इतना अच्छा तोहफा दिया है मैं देख रहा हूँ इसमें राम है ही नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि इन मोतियों के अंदर राम है कि नहीं। तो फिर किसने कहा अरे तुम इतनी बड़ी बात करते हो तुम्हारे दिल में राम है क्या। तो हनुमान जी ने तुरंत क्या किया अपना छाती खोल कर उन्होंने राम भगवान को दिखाया। तो और एक ऐसी एक लीला आती है जब ये सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक गिलहरी भी ये छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी समंदर में। तो हनुमान जी इतने बड़े थे वो बड़े बड़े पहाड़ ला के डाल रहे थे। तो एक बार राम भगवान भी वहां देख रही थी कि क्या हो रहा है कार्य कैसे चल रहा है। तो एक बार हनुमान जी ने वो गिलहरी को कहा अरे खबरदार आप तो मेरे पैर के नीचे पिचक जाओगे हटो। तो राम भगवान ने जो है हनुमान जी को कहा अरे शांति तो देखो आप अपने शरीर के बल से जितना सेवा दे रहे वो भी गिलहरी उतनी सेवा दे रही अपने शरीर के आकृति के अनुसार, तो आपका दोनों का मैं कार्य स्वीकार कर रहा हूं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति वो भक्त जो भी उनको देते हैं चाहे कोई कितनी भी छोटी चीज हो तो भगवान जो है उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। तो ब्रजवासी एक कथा बताते हैं कि कृष्ण भगवान ये मोर का पंख क्यों धारण करते हैं। तो एक बार एक ब्रजवासी बता रहे थे कि ऐसे कृष्ण भगवान अक्सर मुरली बजाते हैं तो मुरली बजाने से मुरली की आवाज़ से मोरों को बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार क्या हुआ कि जब भी कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे थे तो सारे मोर जो है वो बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। तो जब ही कृष्ण वो अपने गायों के साथ घर लौट रहे थे तो मोरों ने सोचा अरे इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा मुरली बजाया तो हमें इनको कुछ देना चाहिए कुछ तोहफा देना चाहिए। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए तो किसी एक मोर ने कहा अरे ये मोर पंख है चलो एक एक मोर पंख दे देते हैं। तो सारे मोरों ने मिलकर क्या किया कृष्ण भगवान को एक एक मोर पंख दिया। तो भगवान सोच रहे थे अरे तो ये इतना सुंदर पंख है तो उन्होंने सोचा चलो हमें इसको अपने मुकुट के ऊपर धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान जो है उसको कहते हैं चौथा गुण है कृतज्ञ। फिर सत्य वाक्यों सच बोलने वाला ईमानदार, अभी कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है, अपने पिताश्री के आदेश के अनुसार 14 साल के लिए वन में चले गए। आप देखते हैं कि अभी हम ज्यादा विस्तारित रूप में नहीं बताएंगे, जब ही दशरथ ने राम से कहा पहले दिन तो सब तैयारी हो रही थी सब लोग खुश थे लेकिन अचानक डिसीजन अंग्रेजी में कहते हैं 23rd आवर, आखिरी शाम को ये डिसीजन चेंज हो गया कि भरत जो है वो राज करेंगे और राम जो है वो 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। तो तुरंत राम ने कहा ठीक है, उन्होंने पिताजी का आदेश जो है उसको स्वीकार किया। हालांकि बताया था कि सारे अयोध्या वासी वो राम के साथ जाना चाहते थे। हाँ, वो राम से इतने प्रेम करते थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी आपके साथ वनवास चलेंगे। लेकिन राम भगवान ने उनको कहा नहीं नहीं, ये केवल आदेश मेरे लिए है। तो आप देखते कि बहुत सारी लीलाएं हैं कि जहां भगवान ने राम भगवान ने अपने वचन, जैसे सुग्रीव को वचन दिया था, बहुत सारे लीलाएं हैं जहां एक व्यक्ति सत्य वाक्यों का मतलब है अपना वचन रखता है। तो एक क्षत्रिय का गुण है कि उसे, और एक वैष्णव के भी गुण के अनुसार जो है एक व्यक्ति अपने वचन को रखता है उसको कहते हैं सत्य वाक्यों। फिर आगे है छठा गुण है दृढ़ प्रतिज्ञ, हाँ मजबूत हौसले वाला। श्री राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया था, धर्मो रक्षति रक्षित। तो दृढ़ प्रतिज्ञ का मतलब है कि जैसे भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही है कुरु नंदन, जो भक्ति के पथ पर रहते हैं उनका मत एक होता है, वो एक ही रास्ते पर चलते हैं। तो इसी प्रकार राम भगवान जो भी निर्णय लेते थे वो उसके प्रति बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होते थे, वो जो है जो भी सोचते थे वो करके रहते थे। तो भौतिक जगत में भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी हम अपने भक्ति में लगे हैं तो उसके प्रति हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तो यह उनका एक ये गुण बताया गया है दृढ़ प्रतिज्ञ। फिर आगे आता है चरित्रेण युक्त। चरित्रेण युक्त का मतलब है कि सदाचारी, सहनशील, दयालु, अच्छा व्यवहार और विचार वाला व्यक्ति, उसको चरित्रेण युक्त। तो एक व्यक्ति आप देखते हैं कि भौतिक जगत में कोई एक व्यक्ति आज के दुनिया में तो भारी क्वालिफिकेशन देखा जाता है, लेकिन पुराने जमाने में अगर एक एक व्यक्ति को अपनी पुत्री का अगर शादी करना है तो वो क्या देखते थे, उस व्यक्ति का चरित्र देखते थे, इस व्यक्ति के चरित्र क्या है, इस व्यक्ति का चरित्र क्या है। तो भौतिक जगत में आज कलयुग में क्या है, लोग क्या देखते हैं, एक व्यक्ति का धन कितना है, वो उसको भौतिक जगत के बारे में उसको कितना ज्ञान है, या भौतिक जगत में उस व्यक्ति का कितना रुबाब है वो देखते हैं। लेकिन ये वास्तविक में सच्चाई नहीं है। तो वास्तविक में अगर देखा जाए कि चरित्र का मतलब है कि एक व्यक्ति अच्छे व्यवहार वाला होता है और वो हर स्थिति में जो है वो सहनशील होता है। तो आप देखते हैं कि राम भगवान के रामायण में बहुत सारी लीलाएं हैं जहां आप देखते हैं कि राम भगवान ने बहुत सारे जो स्थितियों में क्या किया है, वो सहनशील थे और वो दयालु, अच्छा व्यवहार, इस प्रकार जो वो चरित्र जो है वो अच्छे चरित्र वाले हैं, इसलिए उनको कहा जाता है चरित्रेण युक्त। फिर आगे सर्वभूते सुहित, तो इसका मतलब है सभी प्रजा एवं प्राणियों का जो है रक्षक, मददगार। तो रामायण में ऐसे भी उल्लेख आता है कि राम भगवान क्या करते थे, अपना वेश बदल कर वो क्या करते थे, अयोध्या में घूमते थे कि वो ये देखते थे कि चलो प्रजा हमारे बारे में क्या सोच रही है, प्रजा के मन में क्या विचार है, और प्रजा के अच्छे के लिए वो क्या करते थे, वो जो भी कार्य करना है। तो आज के कलयुग में हम देखते हैं कि ऐसे कोई आसान कार्य नहीं है कि कोई प्रजा के लिए, आजकल गवर्नमेंट भी प्रयास करती है लेकिन इतना आसान नहीं है। तो यहाँ आप देखते हैं कि राम भगवान जो है वो कोई भी कार्य करते थे वो ये पहला देखते थे कि इसमें सबका हित है क्या नहीं, वो ये नहीं देखते थे कि केवल ब्राह्मण का हित हो या क्षत्रिय का हित हो। तो लेकिन वो ये देखते थे कि कोई हम कार्य कर रहे तो इसमें से क्या होना चाहिए, जो जो भी प्रजा है, तो प्रजा का मतलब है कि जो चर अचर जीव है, निम्न योनि के जो जीव है उसको भी प्रजा कहा जाता है। तो एक राजा का एक ये होता है, उसकी एक जवाबदारी होती है, तो जो भी कार्य करता है तो उससे क्या होना चाहिए, जितने भी प्रजा है तो उनका जो उनके हित के लिए उसको कार्य करना चाहिए। तो पुराने जमाने हम देखते कि राजा लोग क्या करते थे, अतिथि गृह, फिर जैसे ये होते हैं जैसे तीर्थ यात्रा के लिए बहुत सारे रास्तों से लेके जलपान से लेके कुआं से लेके अतिथि गृह ये सब वो बनाते थे। तो इसको कहते हैं सर्वभूतेषु हित। फिर आगे विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील। तो आप देखते हैं कि राम भगवान वो ऐसे एक विद्वान थे कि बताया जाता है कि वो जो है हनुमान के सेवा से, जैसे मैंने आपको बताया कि हनुमान जी हालांकि वो हार लेने में भी प्रसन्न नहीं थे, लेकिन राम भगवान को उन्होंने प्रसन्न करने के लिए हार लिया था। तो एक बार की ऐसी घटना है, जैसे कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा था न पारे हम, मैं आपका जो है सबका प्रेम है इसको मैं कभी चुका नहीं सकता। तो उसी प्रकार राम भगवान ने भी हनुमान जी से कहा था कि मैं केवल आपको एक प्रेम का आलिंगन दे सकता हूँ, इससे इसके अतिरिक्त ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि राम भगवान जो है उनको विद्वान का मतलब है बुद्धिमान, जैसे चैतन्य महाप्रभु उनको भी कहा जाता है विद्वान गौरांग। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आज के दुनिया में विद्वान किसको कहा जाता है, जिसको IQ भौतिक जगत की बुद्धि, भौतिक बुद्धि जिसको ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को जैसे आइंस्टीन है या बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट है उसको विद्वान कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक वो व्यक्ति विद्वान नहीं है। हाँ, विद्वान वो है जो व्यक्ति देश काल और पात्र के अनुसार दूसरों को वो प्रसन्न कर सकता है और जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, तो ऐसे व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है। फिर आगे जो है दसवां गुण है समर्थशील। समर्थशील का मतलब है कि सभी का भरोसा या समर्थन पाने वाला, या कोई भी कार्य करने में या कार्य कर लेने में दक्ष, उसको कहते हैं सामर्थ्यशील। तो आप देखते हैं कि राम भगवान जो है हालांकि उनकी जो फौज थी वो बंदरों की फौज थी और केवल राम और लक्ष्मण के पास ही कुछ दिव्य अस्त्र थे, लेकिन आप देखते हैं कि राम भगवान ने बंदरों से कार्य लेकर सेतु बनाया और उनके द्वारा ही उन्होंने क्या किया, युद्ध जीत लिया। तो इस प्रकार तो एक व्यक्ति कोई भी स्थिति में अपना कार्य करने में जो दक्ष है या अपना कार्य कर लेने में दक्ष होता है तो उसको सामर्थ्यशील कहा जाता है। फिर अगला शरणागत दायक, ये भी बहुत अच्छा गुण है। तो जैसे मैंने आपको श्लोक बताया था सकृदेव प्रपन्नो यस तव अस्मि याचते। तो आप देखते हैं कि जब भी रामायण का युद्ध आरंभ होने से पहले राम भगवान ने ये घोषणा की थी तो बताया जाता है कि विभीषण जो है उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया रावण को समझाने का, और रावण के जितने भी उसके साथीदार थे कुंभकर्ण से लेके सब, लेकिन सब ने उनकी अवहेलना की। और जब भी कुंभकर्ण आए उनके कुछ 5 साथीदार थे, और जब भी विभीषण आए थे शरण राम भगवान का शरण लेने के लिए, तो बताया जाता है कि उस वक्त जो है हालांकि जो जो ये वानर सेना थी तो उनके अंदर भी बड़ी चर्चा हो रही थी, जांबवान से लेके जो है बड़े बड़े जो है जो वानर सेना में बड़े बड़े ये थे, तो वो भी एक मीटिंग कर रहे थे कि ये हमें विभीषण को लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन बताया जाता है कि उस वक्त जो है राम भगवान ने हनुमान जी से पूछा, अरे आप बताओ आपका मत क्या है, हालांकि राम भगवान त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि विभीषण को और उनके जितने साथीदार थे उनको उन्होंने शरण दिया था। तो इसलिए ये एक उनका अच्छा गुण है शरणागत दायक। फिर आगे आत्मवान। आत्मवान का मतलब है मन पर अधिकार रखना, धैर्यवान व व्यसन से मुक्त, एक संपूर्ण आत्म साक्षात्कार पुरुष।
तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कहावत है, बंगाल में कहावत है, बंगाली कहावत है, आत्मवान मन्यते जगत। आत्मवान मन्यते जगत का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है। अगर आप एक मोची के पास जाओ तो मोची आपको बताएगा कि जूता बनाने के लिए किस जानवर का चमड़ा अच्छा होता है। एक दर्जी के पास जाओ तो दर्जी आपको कपड़ा कौन से मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए उसके बारे में बता सकता है। अगर एक मिठाई वाले के पास जाओ आपको बताएगा कौन सी मिठाई बढ़िया होती है, क्योंकि उनको उनके अंदर एक्सपीरियंस होता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, लेकिन आत्मवान उसको कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने अंदर संतुष्ट है। अभी आप लोगों ने एक नाम सुना हो भगवान का, भगवान का एक नाम है जो है आत्मारामस्य मुनियो। भक्तों को भी आत्माराम कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने अंदर तृप्त है वो दूसरी जगह कहीं तृप्ति के लिए जाता नहीं। चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें उल्लेख आता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भगवान का एक गुण है कि भगवान को यहां वहां भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। तो एक भागवतम में 8वें स्कंद में एक अच्छी लीला आती है, समुद्र मंथन के पश्चात बताया जाता है कि 14 चीज प्रकट हुए थे। जब ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो ये एक अद्भुत लीला है। तो जब ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो सारे देवता असुर लाइन में खड़े हो गए, वो सोच रहे थे लक्ष्मी जी उनको हार डालेगी। हाँ, उस लाइन में विष्णु भगवान भी खड़े थे, तो हालांकि लक्ष्मी जी ने हार उनके अंदर ही डाला, लेकिन पहले लक्ष्मी जी ने बहुत सारा सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि सबके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण है। लेकिन जब विष्णु भगवान का नंबर आया तो लक्ष्मी ने देखा इनके अंदर एक कमी है। उन्होंने कहा इनके अंदर क्या कमी है, ये दूसरों को भाव नहीं देते। भाव नहीं देते इसका मतलब है इनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। तो आप देखते कि भगवान का एक गुण है, वो उनके अंदर कोई कमी नहीं है। हालांकि भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि वहां सहस्र लक्ष्मियां सेवा दे रहे, लेकिन भगवान जो है वो आत्मवान है। आप देखते कि राम भगवान ने एक ही शादी की थी, लेकिन बाद में वो जितने भी यज्ञ करते थे तो वो क्या करते थे, हर एक यज्ञ में एक सीता का पुतला बना देते थे। समय समय पर वो क्या करते थे, उससे अपना कार्य कर लेते थे। फिर आगे 14 नंबर वह गुण है, वो है प्रिय दर्शन, खूबसूरत। श्री राम जहां भी जाते थे उनके प्रति सारे चर व अचर जीव एवं स्त्रियां भी आकर्षित हो जाते थे। तो बताया जाता है कि अगर आप देखते हैं कि कृष्ण लीला में कितने प्रकार की गोपियां थी, किसी को मालूम है कृष्ण भगवान के रास लीला में कितनी प्रकार की गोपियां थी, किसी को मालूम है लिस्ट? किसी को मालूम नहीं कितने प्रकार की गोपियां थी? 18 प्रकार की गोपियां थी। कितने? 18 प्रकार की। उसमें अयोध्या वासी से लेके जो है बहुत सारे रामलीला के जो स्त्रियां थी। तो आप देखते कि राम भगवान जो है उनको देखते ही जो है जीव, हर एक प्रकार के जीव प्रसन्न होते थे। तो एक ब्राह्मण थे, वो क्या करते थे कि प्रतिदिन राम का दर्शन करके अपना वो पूजा कार्य करते थे। तो एक बार क्या हो गया कि राम भगवान तीन दिन के लिए बाहर गए थे, तो उस ब्राह्मण ने 3 दिन भोजन भी नहीं किया। तो किसी ने राम भगवान को बताया कि राम भगवान ने उसे कहा ऐसे मत करो, तो राम भगवान ने उसको एक विग्रह दिया, कहा कि आप इसकी सेवा करो। तो प्रिय दर्शन। फिर है जित क्रोधो। जित क्रोध का मतलब है जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को जीत लिया है। आप देखते हैं कि जब ही चतुर्मास के लिए राम भगवान जो है वो वहां किष्किंधा रुके थे, उसके बाद में भी क्या हो रहा था कि ये थे क्या उनका नाम था सुग्रीव, वो अपनी सेना को भेज नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी बड़े क्रुद्ध हो रहे थे, लेकिन राम भगवान कह रहे थे नहीं नहीं शांति से काम लेंगे। तो जित क्रोध, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है, बहुत सारी लीला है लेकिन समय की कमी है। फिर अनसूयक, संस्कृत में अनसूयक का मतलब है किसी से ईर्ष्या या किसी की निंदा न करने वाला, सकारात्मक भाव रखने वाला। तो आप देखते हैं कि राम भगवान जो है उनके अंदर किसी के प्रति उनको ईर्ष्या की भावना नहीं थी, जबकि कैकेयी ने उनके प्रति कहा था कि चलो आपको सब कुछ अपना राजवेश निकाल कर आपको वन में जाना है। और बहुत सारे लोग भौतिक जगत में ग्वाली और जो सुग्रीव का युद्ध हुआ था तो उसमें वो बताते हैं कि राम ने ग्वाली का जो है ये किया था, वध किया था, वो धर्म के प्रतीक नहीं है। हालांकि हमारे आचार्य जो बताते हैं ग्वाली जो है वो वानर था, तो एक पशु और एक व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है यानी आमने सामने उसको युद्ध में ललकार कर उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ग्वाली का जो भगवान ने वध किया था वो ईर्ष्या के कारण किया था, ऐसे नहीं, क्योंकि ग्वाली ने सुग्रीव के पत्नी को चुरा लिया था, बहुत सारा उसने गलत कार्य किया था। तो अनसूय का मतलब है कि ईर्ष्या से मुक्त और किसी का निंदा न करने वाला। और आखिरी गुण है वो है बिभ्यति देवा, इसका मतलब है युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरते हैं। तो आप देखते हैं कि जब ही राम भगवान सेतु बनाने से पहले उन्होंने समंदर से कहा था कि आप हमें रास्ता दे दो, तो बताया था कि समंदर ने जो है राम भगवान को, वरुण ने राम भगवान का कुछ जिक्र ये नहीं किया उनका, तो बताया था कि राम भगवान जब ही क्रुद्ध हो गए, बताया था कि समंदर का पानी जो है वो उबलने लग गया। तो श्रीमद् भागवत में कपिल देव अपने माँ को एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं भगवान के क्रोध के बारे में, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान का जो क्रोध है ये दिव्य क्रोध है, ऐसे भगवान को क्रोध नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी जो है जैसे एक पिताजी है बच्चों के प्रति क्रोध करते हैं, वो क्या करते हैं कि उसको एक लेसन, एक उसको एक उदाहरण देने के लिए वो एक ऐसे अपना क्रोध दिखाते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दध्यति अग्नि मृत्यु चरति मद भयात। यहाँ कपिल देव क्या बताते हैं, यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु सबों की जान लेती है। तो आज इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो भय से पीड़ित हैं। तो लेकिन अगर एक व्यक्ति राम भगवान को याद करता है तो वो व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है। तो आज आपको हम कुछ भय का एक छोटे दो वीडियो दिखाते हैं। तो आज इस दुनिया में सबसे खतरनाक जो जानवर है वो है मनुष्य है, सबसे खतरनाक जानवर है वो बताया जाता है, मनुष्य से ही इस पृथ्वी के लिए भय है और बाकी जितने 84 लाख 80 लाख जो जीव है उनके लिए भी जो भय है मनुष्य से है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये वीडियो में आप देखेंगे दो व्यक्ति ये जंगल में जाते हैं दूसरे जानवरों को डराने के लिए, तो ये अपना भेष बदलते हैं, थोड़ा देख लो थोड़ा। तो आज जो दुनिया में जो भी हो रहा है अभी हम वो नाम नहीं लेंगे, तो लोग जो है मीडिया देख देख कर इतने डर गए हैं। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि भगवान से बढ़कर कुछ है नहीं है, मारे कृष्ण राके के, राके कृष्ण मारे के, तो राके राम मारे के, मारे राम राके के। जब ही राम जो है वो रावण का वध करने वाले थे तो शिवजी ने कहा पार्वती से, अगर राम इसको मारना चाहते तो मैं कैसे बचा सकता हूं। अभी आप देखो ये मनुष्य एक जानवर का रूप धारण करके वो जंगल में पशुओं को डरा रहे, देख लो थोड़ा इनका आनंद देख लो क्या आनंद है। तो आज इस दुनिया में क्या हो रहा है कि सब जगह एक भय का वातावरण बन गया है। तो ये जंगल के शेर है वो कहते हैं चलो आपका हम परीक्षण करते हैं, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं आपका पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, बहुत सारे हॉस्पिटल में बताया जाता है कि नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रिपोर्ट दे दो, है कि नहीं? तो देख लो, इनका अभी वो टेस्ट के लिए गया है, अभी क्या रिजल्ट आता है आप बाद में देख लेना, ठीक है? हाँ, तो सबसे खतरनाक मनुष्य है वो जो है भय का कारण है। अभी कभी आप सफारी अफ्रीका में जाएंगे जंगलों में, हाँ बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, और आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक जंगल का जो राजा है, सिंह है, हाँ ये तो किसी से डरेगा नहीं है, लेकिन जंगल में क्या करता है, आदमी जाके एक आईना लगाता है और देखो, हाँ उसका दुष्परिणाम क्या होता है, देखो ये जंगल का राजा है वो देख रहा है, अरे हमसे बढ़कर कौन, ये कौन आ गए, ये बेचारा भी सोच में पड़ गया, इसके दिमाग में भी भय पैदा हो गया, हालांकि ये किसी से डरता नहीं है, लेकिन देखो बेचारा, इसको भी एक टेंशन आ गया, इसके अंदर भी एक टेंशन आ गया, अब ये देख रहा है ये है किधर, ये छुपा है किधर, अब वो देख रहा है ये सामने है, पीछे है, आगे है, ऊपर है, नीचे है। तो आज इस दुनिया में क्या है कि जो वास्तविक सच्चाई है उसे हमें छुपा के रखा है, और हमें कहा ये बताया जाता है, अरे अरे ये आपको ये हो गया, आपको सावधान रहना है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। अभी देखो बेचारा ये घूम रहा है आगे पीछे। तो अगर एक जंगल का एक बड़ा शेर बाघ है वो ही इतना डर सकता है, तो हमारे हमारी क्या यानी ये है, यानी क्या योग्यता है? तो अगर हमें भय से मुक्त होना है आज के कलयुग में है, तो सबसे पहला है तो हमें मीडिया देखना बंद करना चाहिए। मीडिया से ज्यादा मीडिया से जितना दूर रहोगे, हाँ उतने ही आप जो है भय से मुक्त हो जाओगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर जब तक भगवान की कोई इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होता। जैसे कहा होता है, भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अभी एक बार की एक ऐसी सच्ची घटना है, एक हवाई जहाज वो आसमान में लटक गया। आसमान में एक ये होता है, जगह होता है जिसको कहते हैं एयर पॉकेट। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हवाई जहाज लटक जाता है, आगे भी नहीं जाता है, पीछे भी नहीं जाता है, नीचे गिरने का ऐसा लगता है कि नीचे गिरने वाला ही है। तो एक बार की एक ऐसी घटना है कि एक हवाई जहाज वो ऐसे एक एयर पॉकेट में आ गया, और सारे यात्री डर रहे थे, आगे पीछे भाग रहे थे, लेकिन एक 5 साल की लड़की थी, वो कॉमिक पढ़ रही थी, उसके अंदर कोई भय नहीं नजर आ रहा था। सब लोग देख रहे थे, ये बच्ची बिल्कुल शांति से कॉमिक पढ़ रही है, इसको कोई डर नहीं है। तो किसने पूछा, अरे तुमको मालूम नहीं है हवाई जहाज गिरने वाला है और तुम बिल्कुल निश्चिंत होके बैठी हो? तो वो लड़की ने कहा, अरे मेरे पिताजी पायलट है तो ये कैसे हवाई जहाज कैसे गिरेगा। उस लड़की ने क्या कहा, मेरे पिताजी जो है वो पायलट है तो मुझे नहीं लगता है कि हवाई जहाज गिरेगा। अगर हमने सचमुच अगर भगवान का आश्रय लिया है तो हमें कोई भी बीमारी से डरना नहीं चाहिए। तो एक सर्वे किया गया इस दुनिया में कि 95% जो है सांप होते हैं जहरीले नहीं होते, लेकिन सांप के काटने से 95% लोग मरते हैं। बिना जहर का सांप भी काटेगा, एक व्यक्ति डर से मरता है, केवल डर से, क्योंकि मुझे सांप ने काटा। किसने काटा? सांप ने काटा। तो जो दुनिया में आज जो हो रहा है वो सच्चाई नहीं है। तो रामनवमी के अंतर्गत आज एक कथा बता देते हैं। तो एक राजा थे जो राम भगवान के अनन्य भक्त थे, वो उनका नाम था कुलशेखर अलवार। तो ये एक ऐसे राजा थे, बहुत ही यानी प्रतिदिन वो क्या करते थे, 2 घंटा रामायण का श्रवण करते थे, 2 घंटा। तो बताया जाता है कि वो जो ये रामायण की कथा करते थे, उनको मालूम था केवल ये राजा कथा सुनने का आनंद लेते हैं, बाकी ये सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए बैठते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ बैठते हैं रामायण की कथा सुनने के लिए, वो राजा को डर के सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए रामायण का श्रवण करते हैं। तो ये लंबी लीला है, लेकिन संक्षिप्त में एक बार की ऐसी लीला है कि जो कथाकार है वो बताते हैं कि अभी राम भगवान जो है वो सेतु जो है पार करके लंका प्रवेश करने वाले हैं रावण से युद्ध करने के लिए। तो ये राजा जब ये कथा श्रवण करते थे वो इतने भाव विभोर हो जाते थे, वो लीला प्रवेश कर जाते थे। लीला प्रवेश का मतलब है कि उस लीला में वो प्रवेश कर जाते थे। तो जब ही उस दिन वो राजा ये कथा श्रवण कर रहे थे वो इतने भाव विभोर हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार उठाई और जाके घोड़े के ऊपर बैठे और अपने सेनापति को कहा, सेनापति मैं आगे जा रहा हूं, आप पूरी सेना लेके आओ, हमें राम भगवान को युद्ध में उनको मदद करनी है। तो राजा जो है वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ के सीधे निकल गए। एक जगह है दक्षिण भारत में धनुषकोटी, जहां से राम भगवान जो है वो लंका के लिए गए थे। तो जैसे राजा वहां आ गए तो उन्होंने देखा, अरे मेरे आने में देरी हो गई, राम भगवान तो आगे चले गए। तो राजा ने सोचा चलो अभी हम समुद्र में छलांग लगाते हैं और हम स्विमिंग करके लंका चले जाएंगे। लेकिन राजा को तैरना नहीं आता था बेचारे को। तो जैसे आगे बढ़ रहे थे, पानी में डूब रहे थे, तो एक समय आ गया तो पूरे डूबने वाले ही थे। तो स्वयं राम भगवान जो है वो समंदर से प्रकट हो गए और उनको बाहर ले आए। और राम भगवान ने उन्हें कहा कि अरे आपको मेरे प्रति इतना प्रेम है, आप मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो राम भगवान ने उनको कहा कि आपका जब भी जीवन का अंतिम समय आएगा, आप इस दुनिया को छोड़ने वाले होंगे, तो उस समय मैं स्वयं आकर आपको मैं जो है वैकुंठ लेके जाऊंगा। तो राम भगवान ने उनको उनके विग्रह दिए, कहा कि आप इस विग्रह की सेवा करो। तो आप लोगों ने प्रभुपाद जी का एक श्लोक कभी सुना होगा, कृष्ण तोदीय पाद पंकज। तो ये राजा ने जो है कुछ एक किताब लिखा था, किसी को मालूम है किताब का नाम क्या है? हाँ, मुकुंद माला स्तोत्रम। तो बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये राजा जो है राम भगवान के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ कथा को विश्राम देते हैं, किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। बोलो श्री राम नवमी महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की।